देखते हैं हम। कुल कह दीजिए। अब ये जो आयत आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये फरमाया, आप कह दीजिए। ये वाली आयत उलमा कहते हैं कि ये आयत इम्तिहान है, इंसान के इम्तिहान की आयत। अच्छा चले, हम वैसे तो टेस्ट देते ही हैं, ये भी टेस्ट दे देते हैं, अल्लाह ताला ने टेस्ट रखे हैं। अच्छा टेस्ट आप देखिए, एक टेस्ट ये भी आप देते हैं ना, जो सिपारे का टेस्ट होता है, तो ये देख लें, अयालम माफी समाती व माफिल, और अल्लाह क्या जानता है, इन तो खू माफी सुदूरी को मौत हो तो बदो, हम ना आपको देख रहे हो कुछ भी, ना कोई भी नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, वो जानता है। अल्लाह ताला दिलों के अंदर को भी जानता है, उसको पता है दिलों के अंदर किसकी क्या है, कितनी मोहब्बत किससे है, किनकी तरफ को मिलान है, किनकी तरफ को दिल खिंचता है, बड़े अच्छे लगते हैं वो, और किन से दिल में तंगी सी आ जाती है, बैकवर्ड से लगते हैं। अब चाहे जुबान से या अपने बातों से हम कितना भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम बड़े नेक हैं, ये अल्लाह को तो पता है ना दिलों में क्या, तो वो दिलों की कुछ बात आ रही है और यही इम्तिहान है। तो लेट्स सी हम इस इम्तिहान में अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, अपना भी जरा हम अपना अपना इम्तिहान लेते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी आप इनसे कह दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। इसलिए ये कहा गया क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये दावे होते हैं ना, हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझे तो अल्लाह से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, बस मैं तो क्या बताऊं कितनी मुझे मोहब्बत है, तो बस मैं तो रो पड़ती हूँ, मैं तो ऐसे हो जाती हूँ, ये हो जाता है। तो ठीक है, अगर तुम ये कहते हो कि भाई मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, फत्तबिउनी, तो ए नबी आप इनसे कह दें फिर मेरी इत्तेबा करो। यो हबीबकुमुल्लाह, दो चीजें अल्लाह तुम्हें देगा, नंबर वन वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, वह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम। यानी एक बंदा अगर चाहता है कि मैं अल्लाह की मोहब्बत पालूं, तो उसका भी तरीका उसको पता चल गया, फत्तबिउनी, ए नबी आप उसको कह दें मेरा इत्तेबा करो, यानी अल्लाह का नहीं, यहाँ फत्तबिउनी कुल कह के मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मेरा इत्तेबा करो, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए नबी आप कह दें मेरा इत्तेबा करो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा करो, ठीक है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दूसरी बात ये, जो लोग भी कहते हैं मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, वो अपने आप को चेक कर लें, टेस्ट करें कितनी इत्तेबाए रसूल है उनकी जिंदगी में, जितनी रसूल की इत्तेबा जिंदगी में होगी उतना ही ये दावा सच्चा है, और अगर इत्तेबाए रसूल नहीं है, रसूल के तरीके पसंद नहीं है, रसूल की जिंदगी पसंद नहीं है, रसूल जैसी जो जितने भी उनकी लाइफ के तरीके थे, उनकी एग्जाम्पल थी, वो बैकवर्ड सी लगती है, तो ये तुम्हारा दावा झूठा है कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, झूठा है। याद रखें, ये जो महबूब होता है ना, उसका महबूब भी महबूब होता है, अल्लाह के महबूब है नबी अलैहिस्सलाम। कैसे हो सकता है कोई अल्लाह से मोहब्बत करता हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि बस नाते आए तो हम झूम झूम जा रहे हैं, नातों की महफिल में बैठे हुए हैं, सार धुन रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, और बड़े लहक लहक के हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, बड़ी मुझे मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये कोई मोहब्बत है, ये मोहब्बत नहीं होती, उनका इत्तेबा है मोहब्बत। जानते हैं इत्तेबा किससे बनता है मिलके? इत्तेबा दो चीजों से बनता है, लिख लें इसको, पत्ता भी नहीं है ना, जाहिर हमने इत्तेबा करनी है, अगर अगर हमें सारों को शौक है कि हम वाकई हम भी इस इम्तिहान में पूरे उतरे, अल्लाह ताला ने तो क्राइटेरिया बता दिया कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करनी है ना, तो तुम मेरे नबी का इत्तेबा करो, बस बात खत्म। और तुम्हें इतना शौक है ना कहने का, ये जो डायलॉग है इससे नहीं अल्लाह ताला को कोई फर्क पड़ता कि आप और मैं कितने डायलॉग बोले, और हमें कितना, मेरे अंदर तो मोहब्बत ही बहुत है, इससे नहीं फर्क पड़ता अल्लाह को, उसने ये देखना है आप उसके रसूल की कितना इत्तेबा करते हैं। तो इत्तेबा करें कहाँ, क्या होता है इत्तेबा? इत्तेबा वैसे इसका लफ्जी मतलब होता है फॉलो करना, यानी फुटस्टेप्स को फॉलो करना, पैरवी, पैर जिसके कदमों के निशान को चल रहा है ना, उसके कदमों के निशान है, आप उनके ऊपर अपना पैर रख के जा रहे हैं, ये होता है इत्तिबा, वैसे आपको एक बता रही हूं। और ये रसूल का इत्तिबा क्या है, दो चीजों से मिलके बनता है, मोहब्बत और इताअत। समझ आ गई बात, मोहब्बत और इताअत मिलती है तो इत्तबाए रसूल बनता है। अच्छा, ये रसूल के साथ मोहब्बत है और रसूल की जो इताअत है उससे इत्तबा बना। और जब अल्लाह के साथ मोहब्बत और अल्लाह की इताअत होती है तो इज इक्वल टू इबादत। यानी आप ये लिख लें, मोहब्बत अल्लाह से और इताअत अल्लाह की इज इक्वल टू इबादत, और मोहब्बत रसूल से प्लस इताअत रसूल की इज इक्वल टू इत्तेबा। बस सिंपल एज दैट, ठीक है ना। यानी इताअत सिर्फ हुक्म पे अमल करना और जो किसी ने मना किया उससे रुक जाना, लेकिन इत्तेबा इससे ऊपर का दर्जा है। इत्तेबा में इंसान इंतजार नहीं करता कि कोई हुक्म दे, बस जो दूसरे को पसंद होता है वो पसंद आने लगता है, जो दूसरे को नहीं अच्छा लगता वो नहीं अच्छा लगता। तो यही बात, इत्तेबा इश्क है। इत्तेबा वाकई मोहब्बत ना हो तो इत्तेबा हो ही नहीं सकता। आप अच्छा इसकी एग्जांपल ऐसे देखें, आपके बच्चे किसी प्लेयर को पसंद करते हैं, किसी स्पोर्ट्स वाले को पसंद करते हैं, क्या आपको कहना पड़ता है बेटा उसके जैसा हेयर स्टाइल बनाओ, बेटा उसके जैसी बात करो, बेटा उसके जैसा चलो, बेटा उसके जैसे देखो, क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत है ना? नहीं। क्या होता है, जब उसको वो अपना हीरो बना लेता है, जब उसको अपना आइडियल बना लेता है, जब उससे बड़ी मोहब्बत करता है, तो अब वो बाल भी वैसे बनाता है, वो चलता भी वैसे, वो बोलने भी वैसे लगता है, खुद ब खुद करता है, किसी ने कहा नहीं होता उसको। इसी तरह जब रसूल की मोहब्बत आती है ना, तो फिर कोई कहता नहीं है कि भाई अच्छा अब आपने उनको फॉलो करना, खुद ब खुद इंसान फॉलो करता है। तो एक मोहब्बत भी जरूरी है, एक जज्बाती ताल्लुक भी जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ रूखा बुलका, हाँ वो हमारे नबी थे उन्होंने हमें ये सिखाया इसलिए बस, नहीं, मोहब्बत जज्बात होने चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो हर चीज की मोहब्बत से ज्यादा होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके वालिद और उसकी औलाद से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। यानी आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं। हजरत उमर ने फरमाया था ना, या रसूलल्लाह आप मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब है मगर सिवाय अपनी जान के। वो सच्चे लोग थे ना, हमारी तरह नहीं थे, नहीं जी आप तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, उसके बाद जब वक्त आया तो पता ही नहीं जी कहाँ पे है। अब कुरान मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है, मुझे इतना प्यारा, चूम चूम के मैं इसको रखती हूँ। जब शादी ब्याह का मामला है, जब विरासत का मामला आया, तकसीम करने का, जब कारोबार का मामला आया, पता ही नहीं है कुरान भी कोई चीज थी, पता नहीं कोई पढ़ा भी था कुछ, वो फिर नहीं उससे, फिर उसकी परवाह नहीं है। तो ये नहीं होती मोहब्बतें। तो वो सच्चे लोग थे ना, हज़रत उमर ने फरमाया लेकिन बस मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है आपसे, बाकी हर चीज से ज्यादा आप प्यारे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान नहीं मुकम्मल होता जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। तो हज़रत उमर ने फिर फरमाया था कि या रसूल अल्लाह मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए, इतना प्यार करते थे। तो फिर जब इतनी मोहब्बत आती है तो फिर इताअत भी आती है, फिर इंसान कहता है ये हुक्म करे तो फिर, और फिर इंसान के ऊपर वो लेवल आता है मोहब्बत का, जब मोहब्बत इंतहा को पहुंच जाती है ना, फिर इंसान ये नहीं कहता अब ये कोई हुक्म करेगा तो फिर मैं करूंगा, फिर इंसान कहता है कि इसके कहने से पहले ही वो उसके चेहरे को देख के ही कहता है कि ये चीज को नहीं अच्छी लगी, नहीं ये नहीं करनी, ये इसको पसंद आई है ये करनी है। आप इतनी सारी मिसालें आप देख सकते हैं कि जो सहाबा ने मोहब्बत की उनसे सीखे मोहब्बत होती क्या है, मोहब्बत क्या होती है। कि जिस वक्त एक सहाबी ने, वो आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, एक ही दफा आए और उन्होंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते के बटन खुले ना, तो उन्होंने सारी जिंदगी फिर अपने बटन बंद ही नहीं किए कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे देखा था। एक सहाबी है कि वो जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के नीचे से क्रॉस करके जहां पे पड़ाव डाला था, वो जब सफर करते थे उसी के नीचे से गुजरते थे और वहीं पड़ाव डालते थे कि नहीं, चाहे नहीं भी जाना वहां पे, वहां पे पड़ाव जरूर, चाहे नहीं पड़ाव की जरूरत, वहां पे इसलिए पड़ाव डालना कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे पड़ाव डाला था, वो यहां से गुजरे थे तो वो यहां पे ठहरे थे। तो इसलिए आप ये देखें कि उनकी मोहब्बत कैसी थी। गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पांव रखा हुआ, सांप ने आके डस लिया और उस वक्त मुंह से सी तक नहीं निकाली सांप के डसे पे भी, लेकिन आंखों के ऊपर तो इख्तियार नहीं ना, आंखों से आंसू टपके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे गिरी, तो तब आपकी आंख खुली, पूछा क्या बात हुई। ऐसी मोहब्बत जब इतनी लेवल की आती है ना तब होता है। अब देखें ये जो आइडियलाइज करते हैं लोग एक्टर्स को या स्पोर्ट्स वाले लोगों को, वो कोई आगे इनको देख रहे हैं कि ये भाई इन्होंने वो हेयर स्टाइल बनाया कि नहीं, इन्होंने वो कपड़े पहने कि नहीं, ये मुझे कॉपी कर रहा है कि नहीं। फिर इंसान कॉपी करता है, इतिबा क्या करना होता है, कॉपी करना, इमिटेट करना, किसी की नकल उतारना, वो वाली बुराई सेंस में नहीं, नकल से मतलब ये कि जैसा वो कर रहा है बस मैंने वैसे ही करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है कि एक दफा कुर्ते का बाजू लंबा था तो उसको काटने के लिए छुरी मंगवाई, किसी ने पूछा क्यों, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा देखा था, हो सकता है उनके पास कैंची ना हो उस वक्त, उन्होंने ऐसे काटा था तो मैंने भी ऐसे ही काटा। तो देखें वो तो ऐसी चीजों में भी इनका आपने कोई हुक्म नहीं दिया है, इनका आपने नहीं कहा कि ऐसे करो, वो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद तो कद्दू खाना, सिर्फ इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। ये होती है इत्तेबा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की है, वो ये कि ये तो साइड की हो गई चीजें कुछ, मगर ओवरऑल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा जाए तो आपकी जिंदगी को आप क्या कहेंगे कि आपकी जिंदगी का महवर क्या था, किस चीज के गिर्द जिंदगी गुजरती थी, खाने पीने के गिर्द घूमती थी, सैरो तफरी के गिर्द घूमती थी, या और कोई ऐशो आराम की गिर्द घूमती थी, या कमाइयां करने की गिर्द घूमती थी, तजारतें उस वक्त किस चीज के गिर्द घूमती थी बताएं। अगर आपको एक सेंटेंस में पूछा जाए कि आपकी जिंदगी का पूरी का, हम ये नहीं पूछ रहे कहाँ जाते थे, कहाँ से आते थे, कैसे खाते थे, और पूरी जिंदगी का महवर क्या था, उनकी लगन क्या थी, उनकी बेचैनी क्या थी, उनका गम क्या था, उनकी जिंदगी क्या थी, दीन का पैगाम आगे पहुंचाना, सही है ना। तो जब इत्तेबा करने लगे और इसी बात को अगर भूल गए जो मेन उनका सेंटर ऑफ लाइफ था, तो क्या इत्तेबा किया आपने, चाहे आपने वो चीजें खा भी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा पसंद था आपने मीठा खा लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पसंद थी आपने ये खा ली, खजूर खाते थे आपने वो खा ली, चलो दाढ़ी रख रहे थे किसी मर्द ने दाढ़ी रख ली, ठीक है वो अपनी जगह बातें, लेकिन ये पॉइंट ना भूलें कि उनकी जिंदगी का सेंटर क्या था, उसमें इत्तेबा ना की तो फिर किसमें की। हमने तो इस काम से जो उनकी जिंदगी का महवर था उसको करना तो दूर की बात है, उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं हमने, तो वो चीज को फॉलो करना तो बाद की बात है, हमने तो जो उनके गम थे उसका गम भी नहीं लगाया, वो गम हमारा है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लेने के लिए इतने बेताब होते थे, जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते थे, अल्लाह ताला ने मना फरमाया नबी आप जल्दी ना याद करें, आप इसमें ना जल्दी करें, हमारा काम है आपको याद कराना। शौक इतना था इस पैगाम को पहुंचाने का कि हालात किसी किस्म के भी थे आपने पैगाम पहुंचाना नहीं छोड़ा। आपका क्या ख्याल है मुझे आप लोग बताएं, आपका क्या ख्याल है, मक्का में बहुत आराम के हालात थे या टेंस थे, स्ट्रेस था कि मजे थे, उससे ज्यादा टेंशन के क्या हालात हो सकते, ये हर वक्त इधर उधर से कोई ना कोई परेशानी, किसी सहाबी के साथ ये हो गया, किसी के साथ वो कर दिया काफरों ने, कोई काफरों ने ऐसे कह दिया, किसी जगह आपको बैन कर दिया, ये कर, और एवरी टाइम कोई ना कोई टेंशन वाली चीज थी। मगर क्या आप सरासर आराम से बैठ गए कि अभी हालात सही नहीं है, जब हालात सही होंगे तब काम करेंगे, अभी नहीं, अभी दावत का काम इस वक्त नहीं हो सकता, जब सब चीजें देखें ना, चीजें तो सेटल हो जाएं, अभी तो मैं टेंस हूं बहुत, नहीं, जब अल्लाह की तरफ से आ गया सूरह मुजम्मिल की आयात आ गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे उठ खड़े हुए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पहुंचाया। हम तो सिर्फ इतनी छोटी बातों पे ही कह देते हैं ना कि नहीं अब तो ऐसे नहीं है, अब तो हालात नहीं, अब तो कोरोना है, अब तो फलाना है, अब तो ये है, हमें तो हर वक्त कोई ना कोई स्ट्रेस है, कोई ना कोई जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, हमने नहीं कुछ करना, हम कर ही नहीं सकते, नहीं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा तो नहीं, ये इत्तेबा तो नहीं है। हर हर फील्ड में देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आपकी इबादत कैसी थी, पैर सूज जाते थे खड़े खड़े रात में, आप लिखना नहीं जानते थे लेकिन कितने खतूत लिखवाए आपने बादशाहों के नाम। ये ईमान ले आओ, हम तो अपने पढ़े लिखे होके हम अपने करीब वालों को भी नहीं पहुंचा सकते, दूर तक खतूत पहुंचाने तो दूर की बात है। तो आसानियों को तलाश ना करें, वक्त को ना सोचे कि जब वक्त आएगा ना ऐसा तो तब करूंगी, जब हालात ऐसे होंगे ना तब करूंगी। वक्त तो बहुत लिमिटेड है, ये किसी के लिए नहीं रुकना, ये जिंदगी नहीं रुकनी किसी के लिए, इसी में काम करना है। उनकी वाली फिक्र को अपनी फिक्र बनाना है, उनके वाले गम को अपना गम बनाना है, उनकी वाली तड़प को अपना तड़प बनाना है। वो लगन हमारे अंदर, वो डेडिकेशन हो, कोई कहे नहीं कहे, कोई कह रहा नहीं कह रहा, कोई पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, कोई चेक कर रहा है नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के दीन के लिए काम करने में इतना शौक रखूं, इतनी डिटर्मिनेशन हो मेरी कि मुझे किसी की परवाह ना हो, मैं किसी के लिए काम ना करूं, मैं इसलिए करूं कि ये मेरे नबी की लगन थी, मैंने इस दीन के मिशन को आगे लेके चलना, मैं जहां अपना हिस्सा डाल सकती हूं मैं डालू, मैं अपने आप को खपाऊं इसमें, लगाऊं इसमें। लेकिन हमें अगर जिम्मेदारी भी दे दी जाती, अगर कोई नहीं पूछता तो जी उसके बाद पता ही नहीं है, कोई पूछेगा तो जागेंगे, कोई पूछेगा नहीं तो कोई परवाह नहीं। अगर अल्लाह चांस दे देता है ना कि अल्लाह के दीन के लिए कुछ आप करें, तो खुशकिस्मती समझे अपनी और दुआ किया करें अल्लाह ताला इसमें इखलास भी दे और मुझे लगा दे इसके अंदर, मुझे हिकमतें दे कि मैं बेहतरीन तरीके से अपने इस काम को करूं। लेकिन हमारा हाल क्या होता है, शुरू तो बहुत शौक से करते हैं, मुझे ओहदा मिल गया, मुझे पोजीशन मिल गई, मुझे उसके बाद क्या, उसके बाद कहीं पता ही नहीं, उसके बाद कामों में सुस्ती है, उसके बाद कामों में सर से उतारने वाले काम है, बस हो जाए बस मारे बांधे का कर लिया ना, उसके बाद वो लगन नजर नहीं आती। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, वो फिर सोचें, हमें तो वैसे वाले, हमें तो वहां तक अल्लाह माफ करे हमें और कभी ना ऐसा हो, मगर वो ऐसी मुखालफतों का सामना नहीं, हमें वैसे हालात नहीं, फिर भी हम कितने आराम पसंद है, फिर भी हम नहीं लगाना चाहते अपने आप को इस तरफ, फिर भी हम नहीं चाहते कि हम उनका उनके वाले बेचैनी और उनके वाले गम को अपना गम बनाए, हमारे पास और बहुत चीजें गम लेने की, तो उनका इत्तेबा करना है तो सबसे पहले अव्वलीन चीज ये है, और उसके अलावा भी सारी चीजों में ही फिर देखें, सारी चीजों में ही देखें। लेकिन अगर आपका दिल घुटता है ना उनके वाले हाल हुलिये से, आप उनके वाला हाल हुलिया किसी को देखते हो ना, ये क्या ऐसे के साथ तो शादी भी नहीं करनी, दाढ़ियां रखी हुई हैं, ये देखो इनके पजामे किधर जा रहे हैं ऊपर, देखो जरा इनके टखने नंगे हुए हैं, ये कैसे कार्टून से, अगर आपको ये लगता है ना नाउजुबिल्ला, then there is something wrong. Honestly, there is something wrong. क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा आ जाएं तो वो भी ऐसे ही होंगे, वो भी ऐसे ही होंगे, उनके ये हाल हुलिये होंगे, उनके तो तहबंद भी जो है वो ऊंचे होते थे, बिडलियों तक होते थे, तो क्या कहेंगे उनको फिर, यहीं से चेक कर लें, पत्ता भी उन्हीं क्या करना। अब औरतें तो मर्दों वाली चीजों को नहीं इतबा वो कर सकती हाल हुलिये में, मगर हमारे क्राइटेरिया क्या है, हमें वो अच्छा लगता है जो क्लीन शेव हो, हमें वो अच्छा लगता है जो जिसने चुस्त कपड़े पहने, जो लेटेस्ट कोई हीरो बन के आया, हमें वो अच्छा लगता है, हमें कहां ये हाल हुलिये अच्छे लगते। तो हमने क्या इतबा करनी है, हमने तो हमारे तो लगता है कि दावे भी फेक है, मोहब्बत अल्लाह से, मोहब्बत रसूल से, क्या मोहब्बत है जिस मोहब्बत में किसी की शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, किसी का हाल हुलिया भी अच्छा नहीं लगता, किसी के वाली लगन भी अच्छी नहीं लगती, किसी वाली इबादत भी बोझ लगती है, किसी के वाली जिंदगी भी अजीब लगती है, ये है इत्तेबा। तुम इत्तेबा करोगे ना, अल्लाह ताला ने एक मॉडल दे दिया और ये मॉडल दे के अल्लाह ताला ने बता दिया सारी इंसानियत के लिए, वन पर्सन इज रोल मॉडल पूरी इंसानियत के लिए, तुम इस रोल मॉडल पे सब अपने आप को परखो, ये क्राइटेरिया, तुम देखो तुम कितने सिमिलर हो इससे और कितने दूर हो इससे, जितने तुम इस रोल मॉडल के करीब होगे उतनी तुम्हारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत के लिए ही करेंगे, और जितने तुम इस रोल मॉडल से दूर हो उतने ही तुम अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो। और अल्लाह भी तुमसे तभी मोहब्बत करेगा जब तुम ये वाली जिंदगी लेकर आओगे। एक रोल मॉडल अल्लाह ने खड़ा करके बता दिया और उनकी जिंदगी को प्रिजर्व कर दिया, हमारे तक एज इट इज पहुंच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे बाथरूम गए, कैसे निकले, कैसे इबादत की, कैसे आप अपने दोस्तों के साथ होते थे, कैसे आप अपने बच्चों के साथ होते थे, कैसे आप लोगों के साथ होते थे, कैसे आप अपनी बीवियों के साथ होते थे, कैसे आप मामलात किया करते थे, आपकी तिजारत कैसी थी, आपके और अदलो इंसाफ कैसा था, आप गरीबों के साथ कैसे थे, मोहताजों के साथ कैसे थे, बीवाओं के साथ कैसे थे, गुलामों लौंडियों के साथ आपका क्या ताल्लुक था, आप हुक्मरान कैसे थे, हर चीज में आप देख लेना, आपने चीज बेची तो कैसे थे, आपने खरीदी तो कैसे थे, हर चीज में तो आपके पास पूरी की पूरी उनकी जिंदगी पड़ी हुई है। इत्तेबा करना तो आसान है, ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं हम कहां से करें, नहीं आपके सामने है। हाँ, मगर वो दिल लेकर आओ जिसमें इतनी मोहब्बत हो कि फिर मैंने इत्तेबा करना है नबी का, और वो ही बेस्ट चीज है। आई डोंट केयर क्या दुनिया वाले इसको कैसे देखते हैं। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पे कहा कि अगर रोटी नीचे गिर जाए तो उसको झाड़ के खा लो। अब आज आप किसी के सामने करें तो सही, आपके दुपट्टे के ऊपर भी कुछ गिर जाए तो आप उठा के खाएं, कहेंगे कितनी भूखी है, कितनी नदीदी है। आप पूरा का पूरा शरबत या पेप्सी को पूरा पी लें ग्लास में से तो कहते हैं हाँ ये कितनी, इसको पता नहीं घर में मिलती नहीं। हाँ, हमने अपना नॉर्म ये समझा ना कि थोड़ी सी हमने छोड़नी है ताकि लोगों को पता चले मैं इतनी ऐसी नदीदी नहीं हूं। ये तो आप सल्लम का नॉर्म नहीं था, ये तो उसको जाया करना है। मैं तो छोटी छोटी मिसालें दे रही हूं कि हमने नॉर्म क्या बनाए हैं और नॉर्म है क्या, क्या होने चाहिए हमारे क्राइटेरिया। अल्लाह अकबर, वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम इस नबी का इत्तेबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, तुमसे भी मोहब्बत करने लगेगा। तो अब हमारा सबका शौक होता है अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। हम दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल लदी युबल्लिगुनी इला हुब्बिक। तो अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिले और कैसे पा सकूं वो लेवल के मैं भी अल्लाह से मोहब्बत करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा, एक बात बता दी गई, पूरी जिंदगी आपको दिखा दी गई। अब चलें इस जिंदगी के ऊपर। कुल अतीउल्लाह व रसूल, कह दीजिए इतात करो अल्लाह की और रसूल की, कहना मानो, जो तुम्हें कहें कि ये करो तो उसको करने लगो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना सूरह हशर में, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूल तुम्हें दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ, उसे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि रसूल ने तो ये काम किया नहीं, मैं जी उनसे भी आगे बढ़ जाऊंगी, ये नहीं। उन्होंने तो पूरी रात नहीं नमाज पढ़ी, मगर मैं तो ईशा से शुरू करूंगी और फजर तक, नहीं। अब इताअत, फइन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, और देखिए यहाँ पे इताअत अल्लाह की भी है रसूल की भी। इत्तेबा अल्लाह की नहीं हो सकती, इत्तेबा सिर्फ रसूल की हो सकती, क्योंकि इताअत तो है ना, जो हुक्म दिया वो करो और जो जिसे मना किया उसे रुक जाओ। इत्तेबा क्या है, इत्तेबा उनकी जिंदगी को फॉलो करना, और वो तो सिर्फ रसूल की हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं, वो जो मुनकरीने हदीस है वो किस इस आयत को कैसे फॉलो करेंगे, जब कहा गया अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत तो चलो कुरान से कर ली, रसूल की इताअत किधर से करेंगे, हदीस को ही नहीं जो मानते। फइन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाए, फइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। काफिर यहाँ पे कौन है, काफिर यहाँ पे वो नहीं है वो जो बुत परस्त है, काफिर वो है जो अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत को छोड़ दे और किसी औरों की इताअत शुरू कर दे, जो उनकी इताअत को कुछ ना समझे वो है यहाँ पे काफिर। अल्लाह ताला हमें अपनी इताअत और अपने रसूल की इताअत की तौफीक अता फरमाए, रसूल की जिंदगी की इत्तेबा की तौफीक अता फरमाए। अब हम यहां से जो अब स्टार्ट करने लगे, ये असल में अब डायरेक्टली मैंने आपको जैसे बताया था कि 33 आयत से वफद नजरान को बताया जा रहा है, उनका चूंकि ईमान तसलीस का था यानी ट्रिनिटी का था कि खुदा और ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम ये तीनों खुदा हैं और इस किस्म की बातें, तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में यहाँ पे बताया, अल्लाह ताला ने मौजाना पैदाइश यहिया अलैहिस्सलाम की जो है उसके बारे में बताया, तो यहाँ पे मौजाती पैदाइश का जिक्र है और इसी तरह हजरत मरियम की पैदाइश का भी जिक्र है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत खूबसूरत आयत अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क वाली, कि अल्लाह ही है जो बादशाहत किसी को चाहे अता करे, किसी से चाहे ले ले वो, चाहे तो किसी को इज्जत दे, चाहे तो किसी को जिल्लत दे। और इज्जत हमने कहाँ देखनी है वो भी हमने देखा था, फिर हमने दिन और रात एक दूसरे में दाखिल होने के बारे में हमने बात की थी कि ये भी अल्लाह के हाथ में, जिंदा को मुर्दा से निकालना और मुर्दा को जिंदा से निकालना। तो अपने आप पे आपने गौर किया कि मैं क्या थी, मैं एक जर्रा थी और अब अपने आप को देखें, एक बूंद थी और आज मैं क्या हूं। बियदिकल खैर, सारी की जिस्ट ये है कि अल्लाह तेरे ही हाथ में हर भलाई है। और फिर हमने ये भी देखा था कि किन के साथ हम दोस्ती कर सकते हैं और किन के साथ नहीं कर सकते, और बहुत इंपॉर्टेंट ये, कयामत के दिन इंसान जब अपने अमल को देखेगा तो कैसे वो चाहेगा कि मेरी बुराइयां मुझसे इतनी दूर हो जाए। फिर हमने ये देखा कि अल्लाह की मोहब्बत अगर पानी है ना, और आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मैं ये साबित साबित करना पड़ता है ना हर मोहब्बत को। आप दावे कितने भी करते रहें कि मुझे बहुत मोहब्बत है, मुझे अल्लाह से, रसूल से, मैं तो अपनी जान दे सकती हूँ, मैं फलां कर सकती हूँ, लेकिन देखिए दावे सिर्फ बातें हैं जब तक कि उनका सबूत ना हो। और सबूत ये होगा कि जब हमारी जिंदगी में इत्तेबाए सुन्नत होगी, जितनी ज्यादा सुन्नत की इत्तेबा होगी उतना ही ज्यादा समझ लें कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। ये अल्लाह ताला ने एक प्रूफ मांगा है, और जितनी इत्तेबा होगी उतनी ही अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा। तो आपने सोचा कि हमने कैसे इत्तेबा करनी? छोटी सी किताबी है नबी सलाम के, आप सल्लम के लैलो नहार, उसमें आप सल्लम की सुन्नतें बताई गई हैं। तो हम तो पहले सुन्नतों को ये करके रद्द कर देते हैं ना कि सुन्नत है ना, फर्ज तो नहीं है ना, तो बस ठीक है। यहाँ पे इत्तेबा कहा गया और मैंने आपको इताअत और इत्तेबा में फर्क बताया था, और साफ कह दिया गया इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। आपने मोहब्बत साबित करनी है अल्लाह से तो ये करना होगा, वरना वो जिंदगी जो इस जिंदगी से दूर है उसकी अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, और वो दावे झूठे हैं। ठीक है, मोहब्बत के दावे वो झूठे हैं, तो इसको हमें सीरियसली लेना होगा, सबक पढ़ के आगे नहीं जाना। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जहन में ये था कि हम हर हर सबक के बाद कोई एक सुन्नत देख लिया करें जो हम प्रैक्टिस करें पूरे हफ्ते, इस तरह हमारा एक रिमाइंडर भी हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपको एक सुन्नत बताई जाए। आज का सबक देखते हैं, बड़े लोगों की बातें हैं, वीआईपीज की, आज सेलिब्रिटीज की। बहुत शौक होता है ना हमें बड़े बड़े लोगों के बारे में जानने का, कैसे रहते हैं, अच्छा क्या करते होंगे, फिर उनके इंटरव्यू पढ़ते हैं ना। आज अल्लाह ताला ने हमें इंट्रोड्यूस कराया बड़े लोगों से, बड़ी हस्तियों से, और वो कौन हस्तियां हैं जानना चाहेंगे? और ख़ास तौर पे औरतों का जिक्र है आज, तो इसलिए ये ज़्यादा हमसे रेलिवेंट भी बात है बहुत। ठीक है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بيشك الله تعالى نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو على العالمين. آپ دیکھیں سبحان اللہ، ये नहीं कहा गया आले आदम को और आले नूह को चुना। नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम इंडिविजुअली चुने गए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इमरान अलैहिस्सलाम इनकी, उनको भी और इनकी औलादों को भी अल्लाह ताला ने चुना। चुनने का मतलब क्या है? क्या चुनना, किस चीज के लिए चुना, क्या करना था इन्होंने, चुन के क्या होता है? असल में चुना किस लिए? अपने दीन की खिदमत के लिए, अपने पैगाम को आगे देने के लिए, अल्लाह ताला लोगों को खास करता है, उनको चुन लेता है, चूज करता है, और ये टोटली अल्लाह का चुनाव होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ी मेहनत करे और वो नबी बन जाए। जैसे आप वली बन सकते हैं अल्लाह के, लेकिन नबी मेहनत से नहीं बन सकते। ये अल्लाह ताला की एक चुनाव है जिसमें किसी का अमल दखल नहीं, किसी की दुआओं का दखल भी नहीं कि कोई दुआएं करके नबी बन जाए, अल्लाह मुझे आपसे नबी बना दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह चूज करता है, प्योरली उसकी चॉइस होती है कि वो किसको चूज कर ले। और ये बहुत बड़ा ऑनर होता है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को इंसानियत की गाइडेंस के लिए चूज कर ले। इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं होता, क्योंकि इंसानों के अंदर सबसे ऊंचा मकाम नबूवत का है, रिसालत का है। सुभान अल्लाह। तो इस दुनिया में जो इंसानों में सबसे अफजल इंसान है वो अंबिया है, और आल मतलब जो उनके मिशन को आगे लेने लेके जाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को कैसे चुना, क्या स्पेशल चीज उनको दी। एक तो सबसे पहली बात ये कि वो नबी थे, ठीक है, और सारे इंसानों के बाप अबुल बशर थे। अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथों से बनाया था। जानते हैं कौन सी वो चीजें जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा फरमाया? हर चीज को नहीं अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा फरमाया। कलमाए कुन से पैदा हुई, आसमान जमीन ये सब चीजें कलमाए कुन से पैदा हुई। मगर हदीस में आता है तीन चीजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया। उन तीन चीजों में एक आदम अलैहिस्सलाम भी है। सोचें कितना बड़ा शर्फ अल्लाह ताला ने इंसानियत को अता फरमाया। फरिश्तों को हाथों से नहीं बनाया, जिन्नों को हाथों से नहीं बनाया, जानवरों को हाथों से नहीं बनाया। इंसान तेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने कितना इसके लिए इहतमाम किया कि अल्लाह ताला ने इसको अपने हाथ से पैदा फरमाया। दूसरी क्या चीज अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाई? कलम को। और तीसरी गेस कर सकते हैं किसको बनाया अपने हाथ से? जन्नतुल फिरदौस। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस की दुआ करो। जब दुआ करो आला तरीन जन्नत, सारी जन्नत को नहीं अपने हाथ से बनाया, लेकिन जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथ से बनाया अल्लाह ताला ने। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से बनाया, उनको इल्म दिया चीजों का। आपने पहले पारे में पढ़ा था ना, और फरिश्तों को सजदा करवाया इनको, और जन्नत का मकीन बनाया इनको। फिर इनसे जब गलती हो गई थी तो अल्लाह ने इनको कलिमात सिखाए कि इनसे दुआ करें मुझसे, और उनको उनकी तौबा को कबूल किया था। और ये बहुत बड़े शर्फ हैं जो अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाया, इनको स्पेशल किया। फिर इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारा जमाना गुजरा जिसमें लोग हिदायत पर ही थे। फिर जब लोग गुमराह होने लगे तो अल्लाह ताला ने किसको चूज किया आउट ऑफ ऑल द पीपल? नूह अलैहिस्सलाम को। नूह किससे है ये लफ्ज? नून वहा से, नौहा करने वाला, बहुत ज्यादा रोने वाला। ये उनका नाम क्यों है? इसलिए कि 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन लोगों ने नहीं सुना, और ये रोते थे लोगों की गुमराही देख के। ये सोचें कि एक आदमी और उसकी अपनी बीवी और अपना बेटा भी नहीं समझ रहे बात को, तो कितना रोना होगा। इनकी गम की कहानी सूरह हूद में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप पढ़ेंगे। तो इनको बहुत लंबी उम्र मिली, और उनको इस लंबी उम्र मिल जाना कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है। असल बात क्या है कि इस उम्र में इन्होंने इतनी अल्लाह के दीन की खिदमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इंसानों में बेहतरीन बेहतरीन इंसान वो है जिसको लंबी उम्र मिले और उसमें वो नेकियां करता रहे। तो अगर लंबी उम्र अल्लाह ताला किसी को दे और वो अपनी सारी उम्र नेकियों में गुजारे, तो उसके लिए ये लंबी जिंदगी अच्छी है। इनको तो 950 साल तबलीग के ही मिले, इतनी तो लोगों की जिंदगी भी नहीं होती। और उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं, यानी 5 जो टॉप के पैगंबर हैं उनमें से हैं। और सोचिए कि लगन कितनी होगी अपने काम की। सूरह नूह हम पढ़ेंगे 29th पारे में जब जिंदगी रही तो इंशाल्लाह, कि किस तरह ये इन्होंने कहा कि अल्लाह मैंने दिन रात लोगों को तेरी तरफ बुलाया, ना दिन देखा ना रात देखा, लोगों को हर वक्त तेरी तरफ बुलाता रहा। हम देखें सोचें, 2-4 दफा हम किसी को कह देते हैं ना, इवन अपनी औलाद को भी कहते हैं बस अब बड़ी हो गई, अब मैं थक गई उनको कह कह के। लेकिन सुभान अल्लाह, नूह अलैहि सलाम की डेडिकेशन देखें आप कि कितनी होगी कि वो थके नहीं और वो 950 साल बोलते रहे, एक ही पैगाम देते रहे, एक ही बात करते रहे, हर हर तरह से की, कभी उनको कुछ खबरियां दे के, कभी उनको डरा के, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह। और इनको शर्फ हासिल है कि इनको आदमे सानी कहा जाता है, क्योंकि इनसे इंसानियत दोबारा शुरू हुई थी, सब टूट गए थे, खत्म हो गए। तो अल्लाह ताला ने इनको भी चुन लिया। अब आगे नूह अलैहि सलाम की औलाद में देखें किसको चुना फिर अल्लाह ताला, इब्राहिम अलैहि सलाम को और उनकी फैमिली को। आले इब्राहिम डजंट मीन कि सिर्फ उनकी फैमिली, उसमें इब्राहिम अलैहि सलाम भी इंक्लूडेड है। और आप देखें इब्राहिम अलैहि सलाम के दोनों बेटे बड़े पैगंबर हैं, और एक बेटे इसहाक अलैहि सलाम से तो कितने पैगंबर आए, इतने पैगंबर आए कि यानी सारे पैगंबर सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जितने भी इब्राहिम अलैहि सलाम के बाद पैगंबर आए हैं वो इसहाक अलैहि सलाम की औलाद में से, सिवाय नबी अलैहि सलातो वसलाम के वो इस्माइल अलैहि सलाम की औलाद में से। फिर इब्राहिम अलैहि सलाम ने काबा तामीर किया, अल्लाह ताला ने इनकी औलाद से मक्का आबाद कराया, एक शहर रहती दुनिया तक लोगों की तवज्जो का मरकज रहेगा। अल्लाह ताला ने इनको इमाम बनाया सारी इंसानियत का, याद है आपको पहले पारे में हमने पढ़ा था, सारी इंसानियत इनकी तरफ लुक अप करती है। देखिए आप यहूदी हैं या ईसाई हैं, सब इनको मानते हैं, सब इनकी ताजीम करते। तो ये कितना बड़ा ऑनर है, और एक बंदे के लिए कितनी बड़ी ये बात है कि उसकी औलाद में से पैगंबर पैदा हो, और औलाद से बाहर नहीं फिर कोई हुआ। फिर आले इमरान को अल्लाह ताला ने चुन लिया, इमरान अलैहिस्सलाम को भी और उनकी औलाद को भी। और हिस्ट्री में ना दो ही इमरान का नाम आता है, एक इमरान है मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद, उनका नाम भी इमरान था, तो उनके भी दोनों बेटे पैगंबर हुए। और दूसरी इमरान है हजरत मरियम के वालिद, और यहां पर वही मुराद है इसलिए कि उन्हीं की आगे बात हो रही है। आप देख लें ना, नजरान का वफद आया हुआ, ईसाई है जो उनको मानते हैं, हजरत मरियम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और किस तरह उनके कॉन्सेप्ट ही गलत है, तो यहाँ पे वो क्लियर किया जा रहा है। तो हजरत इमरान को इमाम बनाया बैतुल मकदस का, वो इमाम थे, अल्लाह ताला ने उनकी भी औलाद को भी चुन लिया, अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर, उनके जमाने के लोगों को, लोगों पर। और ये बड़ा ही बहुत बड़ी बात होती है अल्लाह ताला किसी को चुन ले। देखिए एक तो होता है ना पैगंबर बना के अल्लाह ताला किसी को चुन ले, वो तो प्योरली है कि दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ने चुना, लेकिन अब तो पैगंबर नहीं आने, तो अब अल्लाह ताला किसी को अगर चुनता है ना अपने दीन की खिदमत के लिए, तो ये बहुत बड़ा ऑनर होता है, बहुत बड़ी बात होती है, इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है। क्योंकि अब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उलमा जो है वो अंबिया के वारिस है, यानी अब जैसे पहले जमाने में अंबिया होते थे, और अब क्या होंगे, उलमा होंगे। तो जो भी कुरान का, सुन्नत का ये इल्म लेता है ना, और आगे इसको पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, इंसानियत को दीन पहुंचाने के लिए अपने वक्त लगाता है, अपनी जिंदगी लगाता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ऑनर की बात है, समझ लें अल्लाह ताला ये भी चुनता है किसी को। तो पहले तो दीन की समझ इसका पहला स्टेप है। आज आप सबसे पहले ये शुक्र अदा कीजिए कि मिलियंस और बिलियंस लोगों में से अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि आप दीन को समझे, और जिस कुर्सी पर और जिस जमीन की जगह पर आप बैठे हुए ना ये दीन का इल्म लेने के लिए, वो जमीन में सबसे बेहतरीन जगह। ये बहुत बड़ा एजाज है वल्लाही, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा इकराम है कि अल्लाह के फरिश्ते पर बिछाएं। जो अल्लाह के दीन का इल्म लेता है, ये ऐसा मुकद्दस रास्ता है जो इंसान को सीधा जन्नत तक लेकर जाता है। तो ये मामूली बात नहीं है कि फरिश्ते और मखलूकात, जमीन की मखलूकात, आसमान की मखलूकात, समंदर की मछलियां, चूंटियां अपने बिलों के अंदर दुआएं मांग रही हैं किसी के लिए। ये छोटी बात है भला, ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। तो कभी ये ना समझे कि मेरा फलां साथी, मेरी फलां दोस्त, देखो वो तो इतनी डिग्री ले रही है और वो तो जॉब कर रही, मैं तो पता नहीं इसके अंदर ही फंस के रह गई, मैं तो पता इसके अंदर ही लग के रह गई। नहीं, आपको नहीं पता, हो सकता है आपके हस्बैंड को भी रोजी आपके इल्म लेने की वजह से मिल रही हो, आपको आप नहीं जानते। कैसे आप कहेंगे, आप ये बात कैसे कह सकती? ऐसे ही कह सकती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी थे जो इल्म लेते थे, और उनका भाई जो था वो मेहनत मजदूरी करता था। तो एक दिन भाई शिकायत के लिए आया कि ये मेरा भाई जो है ये बस सारा दिन आपके पास बैठ के ये पढ़ता ही रहता है और मेरे साथ नहीं हाथ बटाता कि जो है मेरे साथ आके कोई मेहनत मजदूरी कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है जो तुम्हें रोजी में मिल रही है वो इसी की वजह से मिल रही है, हम नहीं जानते। तो ये इल्म इतनी बरकतें लेकर आता है ना कि ये आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी बरकतें कहां 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 तक फैलती। तो ये इल्म बहुत बाबरकत इल्म है, लेकिन इस इल्म के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत उठानी पड़ती है, आराम को कुर्बान करना पड़ता है, एंटरटेनमेंट को कुर्बान करना पड़ता है, बहुत सारे शौक अपने छोड़ने पड़ते हैं, तब ये इल्म आता है। ये इल्म मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जिस्म की आराम के साथ नहीं आता, ठीक है? ये जिस्म को आराम अगर आपने देना है ना, उसके साथ ये इल्म नहीं आएगा। कभी नींद को भी कुर्बान करना पड़ेगा, नींद को लिमिट करना पड़ेगा कि मेरे पास सारा दिन में और मसरूफियात है, मैं रात को पढ़ू या मैं सुबह सवेरे उठ के पढ़ू ताकि मेरी और जिम्मेदारियां ना इफेक्ट हो। इंसानी इल्ला मासा, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी वो कोशिश करता है, जिसकी वो मेहनत करता है, बस इतना ही आपके लिए। तो दीन का भी इल्म आपको उतना ही आएगा जितनी आप मेहनत करेंगे। तो इसलिए ये मकाम और मर्तबे हैं, ये बुलंद मकाम और मर्तबे हैं, और बुलंद मकाम और मर्तबे ऐसे ही नहीं मिल जाया करते, इनके लिए इंसान को मुशक्कत उठानी पड़ती है, तकलीफ सहनी पड़ती है, बगैर थकावटों के नहीं आ जाता, सहल पसंदी से नहीं आ जाता। या आप उधर बर्तन भी धोती रहे, साथ आप क्लास भी ले रही हैं, साथ आप बच्चों से भी बातें कर रही हैं, साथ आप इधर भी अपना सीख भी रही हैं, ये इस तरह से नहीं आता फिर। हाँ, सुनने की हद तक ठीक है, सुन तो लेंगे आप, अच्छी बात कोई भी सुन लेना अच्छा है, कुछ ना होने से बेहतर है। मगर अगर आप चाहते ना इल्म के बुलंद मर्तबे आप पाए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, ऐसे नहीं आएगा। ये कितने भी साल आप इसी तरह सुनते रहे, इल्म वाले नहीं बनेंगे आप, रासिखूना फिल इल्म नहीं बनेंगे। रासिखूना फिल इल्म बनने के लिए आपको पहले भी बताया था, बहुत मेहनत चाहिए, और इसके लिए खुद को तैयार करें। इसको भी एक काम समझें अपने लिए, एक साइड की चीज ना समझें, साइड पे चल रहा है चलता रहे। तो अल्लाह ने आप चुन तो लिया है, आगे मेहनत करना आपका काम है, आगे ये सीढ़ियां चढ़ना आपका काम है, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ना है।